एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम सबने इस्तेमाल की है, पर शायद उसके बारे में कभी इतना सोचा नहीं। डिक्शनरी।
हाँ, मतलब शब्दकोश, वो भारी भरकम किताब जो पहले शेल्फ पर रखी होती थी, अब तो खैर फोन में ही है।
बिल्कुल, पर सवाल ये है कि क्या डिक्शनरी सिर्फ शब्दों के मतलब बताने वाली एक सीधी साधी लिस्ट है?
मुझे तो हमेशा यही लगता था कि भाई जो शब्द चलन में हैं उन्हें इकट्ठा करके किताब में डाल दिया, इसमें और क्या हो सकता है।
यही तो सबसे दिलचस्प बात है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे लिंडा मगलस्टोन की किताब डिक्शनरीज की मदद से। हम ये समझेंगे कि ये जो पत्थर की लकीर जैसी लगने वाली किताब है, उसके अंदर दरअसल एक लड़ाई चल रही है।
लड़ाई? कैसी लड़ाई?
एक खींचतान इस बात पर कि भाषा को कंट्रोल कौन करेगा, नियम बनाने वाले या फिर हम और आप जो उसे रोज बोलते हैं।
और आज के गूगल और एआई के जमाने में तो ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जब एक सेकंड में मतलब मिल जाता है तो ये जानना दिलचस्प है कि पर्दे के पीछे कौन है जो ये तय कर रहा है कि सही मतलब क्या है।
तो चलिए इस छुपे हुए संसार की पड़ताल करते हैं।
इस सफर में हमारी गाइड हैं प्रोफेसर लिंडा मगेलस्टन, और वो कोई मामूली प्रोफेसर नहीं है।
हाँ, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा के इतिहास की प्रोफेसर हैं।
बिल्कुल, और उनकी खासियत सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जिसे ओईडी कहते हैं, उसके प्रोजेक्ट पर काम भी किया है।
मतलब उन्हें अंदर की कहानी पता है।
हाँ, वो जानती हैं कि डिक्शनरी बनती कैसे है, शब्दों को चुनने और उनकी परिभाषा लिखने के पीछे क्या बहसें होती हैं, क्या राजनीति होती है।
और यही उनकी सबसे खास बात है, वो डिक्शनरी को सिर्फ भाषा की किताब की तरह नहीं देखती।
नहीं, वो उसे एक इतिहासकार की नज़र से देखती हैं। उनके लिए हर डिक्शनरी एक टाइम कैप्सूल की तरह है।
टाइम कैप्सूल?
हाँ, जो हमें उस जमाने के समाज, उसकी सोच, उसके डर और उसके पूर्वाग्रहों के बारे में बताती है।
वाह, तो मगलस्टोन की किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि डिक्शनरी कभी भी न्यूट्रल या निष्पक्ष नहीं होती।
कभी नहीं, वो हमेशा एक सांस्कृतिक दस्तावेज होती है, और उसके अंदर हमेशा एक तनाव बना रहता है,
कैसा तनाव?
दो अलग अलग नजरियों के बीच का। एक नजरिया है जिसे मगलस्टोन कहती हैं डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक।
अच्छा।
इसका मानना है कि डिक्शनरी का काम है भाषा को वैसे का वैसा दर्ज करना जैसे लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर लाखों लोग कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसे डिक्शनरी में जगह मिलनी चाहिए,
भले ही वो व्याकरण के हिसाब से गलत क्यों ना हो।
हाँ बिल्कुल, ये एक इतिहासकार का काम है जो बस रिकॉर्ड कर रहा है कि क्या हो रहा है।
ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा नजरिया?
दूसरा नजरिया है प्रिस्क्रिप्टिव या निर्देशात्मक। ये कहता है कि डिक्शनरी का काम सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है, बल्कि ये बताना भी है कि भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए।
मतलब ये जज बन जाता है।
एकदम, कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत, क्या बोलना सभ्य है और क्या नहीं, ये नियम बनाता है और फैसले सुनाता है।
वाह, तो हर डिक्शनरी एक ही समय पर इतिहासकार भी है और जज भी, और इन दोनों के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है।
हाँ, और पूरी किताब इसी खींचतान की कहानी कहती है। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं।
चलिए।
आज हम जो डिक्शनरी देखते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। सबसे पहली डिक्शनरी, जैसे 1604 में रॉबर्ट कॉर्डरे की अ टेबल अल्फाबेटिकल, वो असल में कठिन शब्दों की लिस्ट हुआ करती थी।
कठिन शब्द? मतलब?
मतलब वो शब्द जो लैटिन, फ्रेंच या दूसरी भाषाओं से अंग्रेजी में आए थे और आम लोगों को समझ नहीं आते थे।
अच्छा, तो ये सबके लिए नहीं थी?
नहीं, कॉर्डरे ने तो साफ साफ लिखा था कि उनकी किताब महिलाओं या अन्य अकुशल व्यक्तियों के लिए है। इसका मकसद पूरी भाषा को समेटना नहीं था, बल्कि व्यापार, पढ़ाई या बाइबल पढ़ने में आ रही मुश्किलों को दूर करना था, बस एक टूल था।
तो फिर ये जज बनने का आइडिया कहाँ से आया? डिक्शनरी अथॉरिटी कब बनी?
वो दौर आया 18वीं सदी में सैमुएल जॉनसन के साथ। उस समय इंग्लैंड में एक नया नया मध्य वर्ग उभर रहा था।
अच्छा।
उनके पास पैसे तो आ गए थे, लेकिन समाज में ऊपर उठने के लिए सभ्य दिखना जरूरी था, और इसके लिए सही अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी था।
तो एक तरह की असुरक्षा थी भाषा को लेकर।
बिल्कुल, इसे भाषाई असुरक्षा कहते हैं, और ये आज भी है। लोग सोचते हैं कि अगर वो सही से अंग्रेजी बोलेंगे तो उन्हें ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा।
सही बात है।
और इसी असुरक्षा को जवाब बनकर आए सैमुएल जॉनसन। 1755 में उनकी डिक्शनरी एक क्रांति थी। उन्होंने सिर्फ शब्दों के अर्थ नहीं दिए।
तो क्या किया?
तो उन्होंने दो नई चीजें की। पहला, उन्होंने हर शब्द की जड़ बताई, जिसे एटमोलॉजी कहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये दिखाने के लिए कि शब्द का इस्तेमाल कैसे करना है, शेक्सपियर और मिल्टन जैसे महान लेखकों की कविताओं और लेखों से हजारों उदाहरण दिए।
अच्छा, तो उन्होंने एक तरह से एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। वो कह रहे थे कि अच्छी भाषा वो है जिसे शेक्सपियर जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं। यहीं से डिक्शनरी जज बन गई।
एकदम सही, जॉनसन की डिक्शनरी निर्देशात्मक सोच का शिखर थी। और मजे की बात यह है कि जॉनसन खुद मानते थे कि भाषा को नियमों में बांधना नामुमकिन है।
सच में?
हाँ, वो कहते थे भाषा तो एक बहती नदी की तरह है। फिर भी उनकी डिक्शनरी को अगले 100 सालों तक अंग्रेजी भाषा का अंतिम सत्य माना गया।
तो जॉनसन ने नियम बना दिए, लेकिन क्या हमेशा सब लोग नियम मानना चाहते हैं? मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने इस जज वाले रोल को जरूर चुनौती दी होगी।
और दी भी। 19वीं सदी तक आते आते दुनिया बदल रही थी। विज्ञान का जोर था, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत आ चुका था।
माहौल बदल रहा था।
हाँ, तो विद्वानों का नजरिया भी बदला। उन्होंने कहा कि भाषा को सुधारना हमारा काम नहीं है, भाषा एक जीवित चीज की तरह है और हमारा काम एक वैज्ञानिक की तरह उसके विकास का अध्ययन करना है।
और मुझे लगता है इसी सोच से ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यानी ओईडी का जन्म हुआ होगा।
बिल्कुल, ओईडी का मकसद जॉनसन की तरह जज बनना नहीं था, बल्कि एक इतिहासकार बनना था। उसका लक्ष्य था अंग्रेजी के हर शब्द की पूरी जीवनी लिखना।
हर शब्द की जीवनी?
हाँ, कोई शब्द कब पैदा हुआ, 12वीं सदी में उसका क्या मतलब था, 16वीं सदी में कैसे बदला और आज उसका क्या मतलब है, और कौन कौन से मतलब अब इस्तेमाल से बाहर हो चुके हैं।
ये तो बहुत बहुत बड़ा काम लगता है।
बहुत बड़ा। इसे पूरा होने में 70 साल लगे और ये काम सिर्फ जेम्स मर्रे जैसे कुछ विद्वानों ने नहीं किया।
तो फिर
इसमें हजारों आम लोगों ने मदद की। ये वॉलंटियर अपने घरों में बैठकर किताबें पढ़ते थे और जैसे ही उन्हें किसी शब्द का कोई दिलचस्प इस्तेमाल मिलता, वो उसे लिखकर भेज देते थे। हाँ, एक पोस्टकार्ड पर लिखकर ओईडी को भेज देते थे। ये क्राउडसोर्सिंग का एक अद्भुत मतलब शुरुआती उदाहरण था।
सोचिए आज के जमाने में कितना मुश्किल होता, हजारों लोग आपको पोस्टकार्ड भेज रहे, कोई स्पैम फिल्टर भी नहीं था। पर यह वर्णनात्मक दृष्टिकोण की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था।
हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डिक्शनरी सिर्फ भाषा का इतिहास नहीं लिखती, वो राष्ट्र का भविष्य भी लिख सकती है।
ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका और नोआ वेबस्टर।
वेबस्टर? हाँ, इनका नाम तो सुना है मैंने।
वेबस्टर सिर्फ डिक्शनरी बनाने वाले नहीं थे, वो एक कट्टर देशभक्त थे। उनका मानना था कि अमेरिका को अगर ब्रिटेन से सच में आजाद होना है तो उसे अपनी एक अलग भाषा और पहचान बनानी होगी।
तो उनकी डिक्शनरी सिर्फ एक किताब नहीं थी?
नहीं, उनकी 1828 की डिक्शनरी एक राजनीतिक घोषणा पत्र थी।
एक मिनट, क्या आप ये कह रहे हैं कि स्पेलिंग के पीछे भी एक राजनीतिक एजेंडा था, जैसे कलर को कलर करना? मैं तो इसे बस एक मामूली सा फर्क समझती थी।
ये मामूली फर्क नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था। वेबस्टर ने ब्रिटिश स्पेलिंग जैसे कलर को कलर और सेंटर को सेंटर करके अमरीकी भाषाई आजादी का ऐलान किया था।
अरे वाह।
यही नहीं, उन्होंने स्कंक, स्क्वॉश और कॉकस जैसे शब्द शामिल किए जो खास तौर पर अमरीकी थे और जिनकी ब्रिटिश समाज में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने एक डिक्शनरी के जरिए अमेरिका को एक सांस्कृतिक पहचान दी।
ये तो कमाल की बात है। मतलब शब्द सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि शक्ति और पहचान का औजार भी हैं।
और ये लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई है। 1961 में अमेरिका में वेबस्टर्स थर्ड नाम की डिक्शनरी छपी और उसके बाद जो हुआ उसे डिक्शनरी वॉर्स यानी शब्दकोशों का युद्ध कहा जाता है।
युद्ध एक डिक्शनरी को लेकर? लेकिन क्यों, लोगों को इतना गुस्सा क्यों आया?
गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इस डिक्शनरी के संपादकों ने पूरी तरह से वर्णनात्मक रास्ता अपनाया। उन्होंने ओईडी से भी एक कदम आगे बढ़कर कहा कि हमारा काम सिर्फ ये रिकॉर्ड करना है कि लोग भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत।
इसका मतलब?
इसका मतलब उन्होंने एंट जैसे शब्द को डिक्शनरी में शामिल कर लिया।
अच्छा।
क्योंकि लाखों अमेरिकी लोग रोजमर्रा की बातचीत में इसका इस्तेमाल करते थे, उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि एंट का इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने बस लिख दिया कि कुछ लोग इसे गलत मानते हैं पर ये इस्तेमाल में है।
और इस पे बवाल हो गया होगा।
बहुत बड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने संपादकीय लिखे कि वेबस्टर ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, वो भाषा को बर्बाद कर रहे हैं। ये घटना दिखाती है कि हम चाहे जो भी कहें, अंदर से हम चाहते हैं कि कोई हमें नियम बताए। हम डिक्शनरी से उम्मीद करते हैं कि वो जज बने, सिर्फ एक रिकॉर्ड कीपर नहीं।
ये तो वैसा ही है जैसे आज भारत में लोग इंग्लिश या युवाओं की भाषा को लेके बहस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा बिगड़ रही है और कुछ कहते हैं कि भाषा तो ऐसे ही बदलती है। हम भी इसी निर्देशात्मक और वर्णनात्मक तनाव का हिस्सा है।
बिल्कुल, और आज डिजिटल युग में ये तनाव और भी दिलचस्प हो गया है। अब हमारे पास कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स है।
कॉर्पस, ये क्या होता है?
ये अरबों शब्दों का एक विशाल ऑनलाइन डेटाबेस है। डिक्शनरी बनाने वाले अब अंदाजा नहीं लगाते। कॉर्पस का कमाल ये है कि वो देख सकते हैं कि आज दिल्ली में भाई शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ और मुंबई में कितनी बार।
ये तो भाषा की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है, बिल्कुल लाइव।
हाँ,
इसीलिए सेल्फी, ब्रेक्सिट या लॉकडाउन जैसे शब्द इतनी तेजी से डिक्शनरी में आ जाते हैं।
एकदम, डिक्शनरी अब पत्थर की लकीर नहीं बल्कि भाषा का एक लाइव अपडेट बन गई है।
तो इस पूरी कहानी से अगर कुछ बड़े सबक निकालने हो तो पहला क्या होगा?
पहला और सबसे जरूरी सबक है अधिकार का सवाल। डिक्शनरी की सत्ता या अधिकार कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये हम और हमारा समाज उसे देते हैं।
मगलस्टोन की एक बात है इस पर, है ना?
हाँ, वो कहती हैं डिक्शनरी का अधिकार किताबों में निहित नहीं है बल्कि उन समाजों द्वारा प्रदान किया जाता है जो उन्हें भाषा पर शक्ति प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। जब हम गूगल की पहली परिभाषा को सच मान लेते हैं तो हम उसे वो शक्ति दे रहे होते हैं।
और दूसरा बड़ा सबक ये है कि डिक्शनरी कभी भी तटस्थ नहीं होती, वो एक आईना भी है जो समाज के पूर्वाग्रहों को दिखाता है और एक हथौड़ा भी जो लोगों की सोच को आकार देता है।
बिल्कुल, जब कोई शब्द डिक्शनरी में आ जाता है तो उसे एक तरह की वैधता मिल जाती है।
सही बात है।
और अंत में सबसे जरूरी बात, भाषा का बदलाव एक सच्चाई है, इसे रोका नहीं जा सकता। जो लोग कहते हैं कि भाषा बिगड़ रही है वो भूल जाते हैं कि शेक्सपियर की अंग्रेजी भी उनके 200 साल पहले की अंग्रेजी से बहुत अलग थी।
बदलाव ही एक जीवित भाषा की निशानी है।
एकदम।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
सबसे पहले तो एक जागरूक पाठक बने।
अगली बार जब आप किसी शब्द का मतलब देखें तो एक पल के लिए रुक कर सोचें, ये परिभाषा किसने लिखी होगी, कब लिखी होगी, क्या इसमें कोई छिपा हुआ नजरिया है,
क्या कोई और परिभाषा भी हो सकती है।
हाँ, दूसरा, भाषा के विकास को खुले मन से स्वीकार करें।
जब कोई नया शब्द या बोलने का नया तरीका सामने आए, जैसे आज के युवा जिस तरह लिटरली या वाइब शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
तो उसे गलती कहकर खारिज करने के बजाय जिज्ञासा से देखें।
बिल्कुल, हो सकता है आप अपनी आंखों के सामने भाषा को विकसित होते हुए देख रहे हो।
और आखिर में भाषा से जुड़े विवादों को बेहतर ढंग से समझें।
हाँ, चाहे वो जेंडर न्यूट्रल सर्वनामों पर बहस हो या किसी शब्द के सही गलत होने पर। अब आप समझेंगे कि ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, ये पहचान, अधिकार और दुनिया को देखने के नजरिए को परिभाषित करने की लड़ाई है।
भाषा के हर नियम के पीछे एक सामाजिक राजनीति छिपी होती है।
सही कहा।
मेरे लिए इस पूरे बातचीत में सबसे आश्चर्यजनक बात यही थी कि डिक्शनरी जैसी चीज कितनी ज्यादा राजनीतिक हो सकती है। नोआ वेबस्टर का अपनी डिक्शनरी के जरिए एक राष्ट्र बनाने का विचार, ये दिखाता है कि भाषा के मानक तय करना असल में संस्कृति और पहचान के मानक तय करना है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि ये जो निर्देशात्मक और वर्णनात्मक के बीच का तनाव है, ये सिर्फ डिक्शनरी में नहीं है, ये हर जगह है।
अच्छा?
हाँ, ये दुनिया को नियमों में बांधने की कोशिश और उसे जैसा है वैसा समझने की कोशिश के बीच का इंसानी संघर्ष है। कानून, कला, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश में भी हर जगह ये तनाव मौजूद है। डिक्शनरी तो इस बड़े दार्शनिक संघर्ष का बस एक छोटा सा प्रतिबिंब है।
हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज के AI और सर्च इंजन के युग में जो हमें तुरंत परिभाषाएं देते हैं, नया डिक्शनरी बनाने वाला कौन है? कौन तय करता है कि हमें कौन सी परिभाषा पहले दिखेगी और उन एल्गोरिदम्स में कौन से पूर्वाग्रह छिपे हो सकते हैं? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्यत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।